Om Shanti. Good morning. बहुत सुंदर अभी एक गीत सुन रहे थे हम. एक खुदा तू बता दे, तेरा नाम क्या है, तेरा काम क्या है, तू रहता कहाँ है, ये दुनिया बनाने का तेरा मकसद क्या है. कितने सारे सवाल थे. और शायद ईश्वर के बारे में आज मनुष्य के मन में ये सारे क्वेश्चंस है, क्योंकि जहां तक आत्मा का विषय आता है वहां तक तो हर कोई स्वीकार करता है आत्मा के अस्तित्व को. चाहे नाम अलग अलग दिया, किसी ने सोल कहा, एनर्जी कहा, शक्ति कहा, लाइफ फोर्स कहा, लेकिन है उस चैतन्य शक्ति की ओर इशारा. परंतु जहां परमात्मा का विषय आता है वहां आज संसार में बहुत सारे मत मतांतर हो गए. ईश्वर को लेकर के इतनी सारी बातें हैं, जो कहा जाता जितने मुख उतनी बातें, जितने दिमाग उतने विचार. और इसीलिए सत्य क्या है उसको मनुष्य समझ ही नहीं पाता है. बड़े बड़े ऋषियों ने जब ये कह दिया शास्त्रों में, नेति नेति, यानी हम नहीं जानते हैं वो कौन है, तो फिर आज का मनुष्य तो कैसे समझ सकता है. और इसीलिए शायद हर एक ने अपने अपने ओपिनियन दे दिए और यही मान्यता चला दी कि हाँ यही भगवान है. एक बार एक बहन मेरे सामने आकर कहने लगी कि उसका बेटा 17 साल का है और वो अपनी माँ से पूछता है कि हिंदू धर्म में इतने भगवान क्यों है, क्रिश्चियन धर्म में एक गॉड क्यों है. वो माँ उस बच्चे को समझाने का प्रयत्न करती है कि बेटे हिंदू धर्म में सारे भगवान है. वो बच्चा कहता है भगवान तो एक होना चाहिए, इतने सारे भगवान कैसे हो सकते हैं. और अगर ये सारे भगवान है तो इन सबका हेड कौन है. वो माँ उस बच्चे के प्रश्न का जवाब नहीं दे पाती है और इसीलिए जब भी वो माँ अपने बच्चे से कहती है चलो मंदिर चलो, कोई स्पेशल ओकेजन होता है तो बच्चा मना कर देता है, यही कहते हुए कि मंदिर जाने के बाद आई गेट सो कंफ्यूज्ड, वेयर शुड आई फोकस माय माइंड. और इसलिए उसको लगता है मंदिर जाना माने टाइम वेस्ट करना है, क्योंकि उसका मन तो लगता नहीं है तो क्यों टाइम वेस्ट करे. वो कहते हैं इसे तो मैं चर्च में ना जाऊं, जहां एक गॉड है तो कम से कम मैं अपने माइंड को फोकस तो कर सकूं. वो माँ को बड़ा दुख होता है कि मेरा बेटा नास्तिक होता जा रहा है. लेकिन शायद यह आज इस माँ का ही दर्द नहीं है, कहीं आज की जनरेशन के बच्चे माँ बाप से ये सवाल पूछते हैं और माता पिता के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि शायद वो खुद ही नहीं जानते हैं. और उन्होंने कभी जानने का प्रयत्न ही नहीं किया। इसीलिए जब कहा जाता है कि ईश्वर सत्य है, तो सत्य तो एक होना चाहिए। इतने सारे ओपिनियंस हो, सारे सत्य तो नहीं हो सकते हैं। तो राजयोग के लिए ये भी जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मेडिटेशन करना है, अपने माइंड को फोकस करना है, तो सुप्रीम सोर्स जहां से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो कौन है, उसको समझना भी जरूरी है। तो इसीलिए वर्तमान समय में मनुष्य जब अपने माइंड को उस परमात्मा में फोकस करे तब वो रिलैक्स कर सकता है, नहीं तो हमेशा स्ट्रेस में बना रहता है। एक बार हमने एक कार्टून देखा कि एक व्यक्ति न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और न्यूज़पेपर में जितनी कॉलम्स आती है हर कॉलम में ईश्वर के बारे में कुछ ना कुछ लिखा था। पहली कॉलम में लिखा था नेचर इज गॉड, दूसरी कॉलम में लिखा था आत्मा सो परमात्मा अहम ब्रह्मास्मि, तीसरी कॉलम में लिखा था ब्रह्म ईश्वर है, चौथी कॉलम में लिखा था ईश्वर सर्वव्यापी है, कहां नहीं है, जहां देखू वहां तू ही तू है, पांचवी कॉलम में लिखा था वो निराकार है, न नाम है न रूप है न आकार है, छठी कॉलम में लिखा था वो साकार है। जितने भी इष्ट देवी देवताएं हो गए वो सब परमात्मा के रूप है, और नीचे बड़े अक्षरों में लिखा था देयर इज नथिंग लाइक गॉड। अगर सचमुच भगवान है तो क्या आप उसको प्रूव कर सकते हैं? अब जो व्यक्ति ये न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, सारी कॉलम्स पढ़ने के बाद उसने क्या डिसीशन लिया होगा, व्हाट इज ट्रुथ? क्या ये सभी सत्य है? इसमें से एक सत्य है या सत्य कुछ और है जिसको अभी तक हमने समझा ही नहीं? आपका विवेक क्या कहता है, क्या कहता है? क्या ये सारे ओपिनियन सत्य है? क्योंकि ये सारे ओपिनियंस एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। क्या प्रकृति को परमेश्वर कहे या आत्मा को कहे? क्या ब्रह्म को ईश्वर कहे या कण कण में व्यापक है कहे? क्या निराकार को कहे, साकार को कहे या है ही नहीं कहे? कितना कंफ्यूजन है। वो कहानी याद आती है कि एक बार पांच सूरदास थे, उन्हें कहा गया हाथी घर में जाकर देखो हाथी कैसा है। थे तो नेत्रहीन, गए हाथी घर में, जिसके हाथ में जो आया वैसे हाथी को डिस्क्राइब कर दिया। एक के हाथ में पैर आए तो कहा हाथी खंभे जैसा है, पीठ आई तो कहा दीवार जैसा है, पूंछ आई तो कहा रस्सी जैसा है, सूंड आई तो कहा सांप जैसा है, और कान आए तो कहा सूप जैसा है, पंखे जैसा है। यहां तक तो कहानी हम सभी जानते हैं, लेकिन इस कहानी को मैं थोड़ा एक्सटेंड करती हूं। कि मान लो कि ये पांचों सूरदासों को कहा जाए, आपने जो महसूस किया, एक छठा सूरदास दूर बैठा है, उन्हें जाकर के बताना है हाथी कैसा है। ये वन बाय वन जाते हैं। पहला कहता है, देख भाई, हाथी एक ऐसा प्राणी है जो लंबा लंबा खंभे जैसा है। थोड़ी देर के बाद दूसरा जाकर कहता है, देख भाई, हाथी एक ऐसा प्राणी है जो सीधा सीधा दीवार जैसा है। थोड़ी देर के बाद तीसरा जाकर कहता है, देख भाई, हाथी एक ऐसा प्राणी है जो गोल गोल रस्सी जैसा है। थोड़ी देर के बाद चौथा जाकर कहता है कि हाथी एकदम लचीला सांप जैसा है। और पांचवा जाकर कहता है कि हाथी एक पंखे जैसा है। ये पांचों की बातें सुनने के बाद ये छठा सूरदास क्या समझेगा कि आखिर हाथी है कैसा। हर कोई आता है अलग बात कहता है, आखिर ये प्राणी है कैसा, लेकिन विश्वास कर लेता है कि पांच ने तो महसूस किया ना, वो झूठ थोड़ी बोलते होंगे, सही होगा, होगा कोई प्राणी ऐसा। अब ये छठे सूरदास को कहा जाता है कि तुमने जो समझा, एक सातवां सूरदास और दूर बैठा है, तुम्हें जाकर उसको सुनाना है कि हाथी कैसा है। अब ये छठा सूरदास जाता है सातवें सूरदास के पास और कहता है, देख भाई, मैंने तो महसूस नहीं किया, लेकिन पांच ने जो महसूस किया, उन्होंने जो मुझे बताया, वो मैं तुझे बताता हूं कि हाथी एक ऐसा प्राणी है जो बहुरूपिया है, घड़ी घड़ी रूप बदलता है। कभी तो वो खंभे जैसा हो जाता, कभी दीवार जैसा हो जाता, कभी वो रस्सी जैसा हो जाता, कभी सांप जैसा हो जाता, और कभी पंखे जैसा हो जाता। अब सातवां सूरदास, जिसका आईक्यू लेवल हाई था, ये बात सुनने के बाद वो क्या कहेगा, हाउ कैन यू बिलीव दिस, कोई प्राणी रंग बदल सकता है लेकिन पूरा ढांचा ही बदल दे, स्केलेटन ही बदल दे, ऐसा कभी हो सकता है क्या, हाउ कैन यू बिलीव दिस। तो छठा सूरदास क्या कहता है, पांच ने तो महसूस किया ना, वो झूठ थोड़ी बोलते हैं, तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं मानना है छोड़ दो। वो कहता है, आई डोंट बिलीव दिस। कहीं हमारी हालत भी ऐसी तो नहीं हुई, हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी साधना की शक्ति से ईश्वर के कोई गुण को महसूस किया, कोई कर्तव्य को महसूस किया, और जो फीलिंग उन्हें आई उसके आधार पर उन्होंने ईश्वर को डिस्क्राइब करना चाहा। किसी को प्रकृति से कुछ प्राप्त हुआ, कुछ फील हुआ, तो उन्होंने कहा नेचर इज गॉड। किसी को कुछ आत्माओं से मिला तो कहा आत्मा ही परमात्मा है। किसी ने कहा नहीं, ब्रह्म ईश्वर है। किसी को कण कण से कुछ महसूसता हुई तो कहा कण कण में व्यापक है, कहा नहीं है। किसी ने कहा नहीं, उसका कोई आकार ही नहीं है, निराकार है। किसी ने कहा वो साकार है, जितने भी इष्ट देवी देवताएं हैं ये सब परमात्मा है। आखिर सत्य क्या है? क्या ये सभी सत्य है? इसमें से एक सत्य है या सत्य कुछ और है? ये नहीं कि आज ब्रह्मा कुमारियों ने जो बताया कि हमें उसको मानना है। नहीं, हम आपको ओपिनियन नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास बहुत सारे ओपिनियन है। हम और ज्यादा कंफ्यूज करना नहीं चाहेंगे, लेकिन आज हम आपको एक कसौटी देंगे, जिस पर आप अपनी मत को कसकर देखो, सत्य है नहीं तो सत्य को प्राप्त करो। ये कसौटी है पांच बातें। पहली बात, ईश्वर उसको कहा जाए जो सर्वधर्म मान्य हो, जिसको सभी धर्म वाले ईश्वर के रूप में स्वीकार करे, उसको कहेंगे सत्य। ये नहीं कि हिंदुओं का भगवान अलग है तो मुसलमानों का अलग है। गॉड इज वन, सो ही शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाय ऑल द रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड एज गॉड। दूसरा, परमात्मा उसको कहेंगे जो सर्वोच्च शक्ति हो, सुप्रीम अथॉरिटी, जिसके ऊपर कोई नहीं हो सकता है, जो सर्व का माता पिता बंधु गुरु शिक्षक रक्षक हो, उसको कहेंगे परमात्मा। वो प्रार्थना गाते हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। सर्व संबंध हमारे उसके साथ हो सकते, उसके ऊपर कोई नहीं है, सुप्रीम अथॉरिटी। तीसरा, परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्वोपरे हो, अर्थात मनुष्य आत्माएं संसार के अनेक चक्रों में आते हैं, जन्म और मृत्यु का चक्र, देह और देह के संबंधों का चक्र। अब जिसने जन्म लिया, देह धारण किया तो कर्म किया, कर्म किया तो कर्म का फल भोगना पड़ता है, तो कर्म और कर्म के फल के चक्र में हम मनुष्य आत्माएं आते हैं, वो उससे परे हैं। कर्म किया तो या तो वो कर्म पाप कर्म है या पुण्य कर्म है, तो पाप और पुण्य के चक्र में भी हम आते हैं, वो उससे परे हैं, लिबरेट करने वाले हैं। और पाप और पुण्य के फल स्वरूप या सुख मिलता या दुख मिलता, तो सुख दुख के चक्र में भी हम आते, वो उनसे परे है। तो जो इन सभी चक्रों से पर हो, उसको कहेंगे परमात्मा। चौथी बात, परमात्मा उसको कहेंगे जो पर होते हुए भी सर्वज्ञ है, जिसके पास संसार के आदि मध्यांत का ज्ञान है, त्रिकालदर्शी जिसको कहा, जो मनुष्य आत्मा को भी ज्ञान के दिव्य चक्षु प्रदान करने वाले हैं, त्रिनेत्री, और जो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी रचयिता है, क्रिएटर है, उसको कहेंगे परमेश्वर। त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, त्रिदेव। चौथा, परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्व गुणों में अनंत हो, इन्फिनिट इन हिज क्वालिटीज, जिसके लिए माँ शारदा ने कहा, सागर की स्याही बनाओ, जंगलों की कलम बनाओ, धरती का कागज बनाओ, और स्वयं माँ सरस्वती बैठकर ईश्वर की महिमा लिखे तो भी अपरंपार है जिसकी महिमा। तो ये पांच बातें हैं कसौटी, सर्वधर्म मान्य, सर्वोच्च शक्ति, सर्वोपरे, सर्वज्ञ और सर्व गुणों में अनंत। अब ये पांचों बातें किसके साथ लगती है? जितने ओपिनियंस हमारे पास है उसको हम लगाकर देखते हैं कि जब हम कहते हैं नेचर इज गॉड, क्या नेचर के साथ ये पांचों बातें लगेगी? क्या नेचर को परमात्मा के रूप में सभी धर्म वाले स्वीकार करेंगे? आपका विवेक क्या कहता है, करेंगे नहीं करेंगे? क्या प्रकृति को सर्वोच्च शक्ति कहेंगे? वो किसी कवि ने बहुत सुंदर ये गीत की लाइन लिखी है, वो कौन चित्रकार है, वो कौन चित्रकार है जिसने प्रकृति का इतना सुंदर चित्र खींचा, वो चित्रकार कौन है? तो सत्य क्या है? प्रकृति ही परमेश्वर है कहना सत्य है, या प्रकृति परमेश्वर की रचना है कहना सत्य है? आपका विवेक क्या कहता है? हाँ, रचना है कहना सत्य है। अगर प्रकृति को रचना है कहना सत्य है तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रकृति को परमेश्वर मानना ये अज्ञान था, इट वॉज आउट ऑफ इग्नोरेंस, सत्य तो नहीं है। क्लियर? आगे बढ़े। दूसरी बात, जब हम कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, आत्मा ही परमात्मा है, ये कहां तक सत्य है? अगर आत्मा ही परमात्मा हो तो फिर मंदिरों में जाकर हमने ये क्यों गाया, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव? सत्य क्या है, हम ही परमात्मा है या हम उस परमात्मा की संतान है? क्या कहेंगे? आपका विवेक क्या कहता है? मान्यता पर नहीं जाओ, आपका विवेक क्या कहता है, क्योंकि तभी तो समझ सकेंगे। क्या कहेंगे? आत्मा परमात्मा की संतान है कहना ठीक है। कई लोग सोचते नहीं, जीवन में अगर हम पुरुषार्थ करेंगे तो परमात्मा बन जाएंगे। परमात्मा कोई बनने की चीज नहीं है, कोई डिग्री नहीं है जो मैं अपने पुरुषार्थ से प्राप्त कर लूं। मनुष्य अपने कर्मों से अलग अलग टाइटल जरूर प्राप्त कर लेता है। किसी ने पुण्य कर्म किया तो कहेंगे पुण्यात्मा है, किसी ने कोई महान कर्म किया तो कहेंगे महात्मा है, किसी ने धर्म का काम किया तो कहेंगे धर्मात्मा है, किसी ने दिव्य कर्म किया तो कहेंगे देवात्मा है, और किसी ने पाप का काम किया तो कहेंगे पापात्मा है। पापात्मा अनेक है, पुण्यात्मा अनेक है, महात्माएं अनेक है, धर्मात्माएं अनेक है, देवात्माएं अनेक है। 33 करोड़ देवी देवताएं बताते हैं। तो देवात्माएं अनेक है लेकिन परमात्मा एक है। ग्रामर में परमात्माएं ये शब्द नहीं आता है, गॉड इज वन यही कहा जाता है। भावार्थ ये कि ये सभी आत्माएं हैं, परमात्मा एक भी नहीं है। पुण्य परमात्मा नहीं कहा, पुण्य आत्मा कहा, महान आत्मा कहा, महान परमात्मा भी नहीं कहा। देव आत्मा कहा, यानी देव भी परमात्मा नहीं है, तो वो परमात्मा कौन है फिर, जो सर्वोच्च शक्ति है, जिसको सभी याद करते हैं। तो इसीलिए कहा परमात्मा कोई डिग्री नहीं है जो मैं प्राप्त कर लूं अपने पुरुषार्थ से। कई बार कई लोग क्या समझते हैं, सागर से बुदबुदा निकला और सागर में समा गया, ऐसे एक बड़ा परमात्मा है जिसके टुकड़े टुकड़े होकर के हम इस संसार में आए और अंत में जाकर उसी में विलीन हो जाना, परमात्मा बन जाना है। ये कहां तक सत्य है? सागर से बुदबुदा निकला और सागर में समा गया, ये संभव है, क्योंकि वो मैटर है, मैटर मैटर में मिल सकता है, लेकिन आत्मा या परमात्मा मैटर नहीं है, इसलिए मैटर के साथ कंपैरिजन नहीं हो सकती है, एग्जाम्पल नहीं दे सकते हैं। ये मैटर मैटर में मिल सकता है, स्वाभाविक है, लेकिन आत्मा शक्ति है, परमात्मा शक्ति है। और शक्ति के लिए गीता में दूसरे अध्याय में भगवान ने यही कहा कि आत्मा को न तलवार से काटा जा सकता है, न पानी से भिगोया जा सकता है, न अग्नि जला सकती है, न हवा सुखा सकती है। अजर अमर अविनाशी शाश्वत शक्ति है, ये भगवान ने गीता में कहा। अजर जर्जर भी नहीं होती है, अमर मरती भी नहीं है, अविनाशी जिसके अस्तित्व का कभी विनाश नहीं हो सकता है। एनर्जी विच इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो फिर वो विलीन कैसे हो जाएगी? तो फिर कई लोग एग्जाम्पल देते हैं, जैसे पुत्र पिता का अंश है ऐसे आत्मा भी परमात्मा का अंश है। अगेन इट इज मैटर, पुत्र पिता का अंश है, ये पांच तत्व का बना हुआ शरीर, और इसीलिए वो पांच तत्वों में ही विलीन हो जाता है। इसीलिए कहा एग्जाम्पल दे तो बराबरी का देना, और मनुष्य उसको सही मानते गए, कभी अपने विवेक को यूज नहीं किया कि भाई मैटर और एनर्जी की कंपैरिजन कहां है, कैसे हो सकती है। तो इसीलिए सत्य क्या है, आत्मा ही परमात्मा है कहना सत्य है, या आत्मा परमात्मा की संतान है कहना सत्य, क्या कहेंगे? संतान है कहना सत्य है। क्लियर? आगे बढ़े। तीसरी बात, जब हम कहते हैं ब्रह्म ईश्वर है, ये कहां तक सत्य है? अज्ञानता के कारण हम दो दो बातें करते रहे, प्रकृति परमेश्वर है भी कहा, प्रकृति परमेश्वर है, परमेश्वर की रचना है ये भी कहा, आत्मा सो परमात्मा भी कहा, आत्मा परमात्मा की संतान है भी कहा। इसी तरह एक तरफ हम कहते ब्रह्म ही ईश्वर है, और दूसरी ओर हम कहते पार ब्रह्म परमेश्वर, पार पांच तत्वों की दुनिया से पार ब्रह्म में निवास करने वाला ईश्वर। भगवत गीता में अर्जुन भगवान से ये सवाल पूछता है, भगवान ब्रह्म क्या है? तो कहा ब्रह्म वो तत्व है जो परिवर्तन भी नहीं होता है, अपरिवर्तनशील है और सदा है। बाकी पांच तत्वों के अंदर परिवर्तन होता है, लेकिन ब्रह्म महतत्व है जो अपरिवर्तनशील है, जहां कोई परिवर्तन की प्रक्रिया नहीं चलती है, जो सदा दिव्यता से आलोकित, वो है ब्रह्म महतत्व। तो परमात्मा तत्व नहीं है, लेकिन उस तत्व में निवास करने वाले तथ्य है। इसीलिए कहा पार ब्रह्म में रहने वाला ईश्वर, जिसकी महिमा में हम गाते हैं, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचे ते ऊंचा भगवन, जिसका धाम भी इतना ऊंचा है, वो ऊंचे ते ऊंचा भगवान। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़े। चौथी बात, जब हम कहते हैं सर्वव्यापी है, कण कण में है, कहां नहीं है, जिस तरह फूलों के अंदर खुशबू समाई है और वो खुशबू फैलती है, दिखाई नहीं देती है। कई लोग ऐसे ही एग्जाम्पल देते हैं कि इसी तरह परमात्मा भी सर्वव्यापी है, उसको देख नहीं सकते हैं लेकिन महसूस कर सकते हैं, वो कण कण में व्यापक है। अब ये कहां तक सत्य है? सचमुच में अगर परमात्मा कण कण में व्यापक है तो क्या कूड़ा कचरा गंद गटर सब में भगवान है? आपका विवेक इस बात को स्वीकार करता है कि कूड़ा कचरा गंद गटर सब में भगवान है? करेगा? अरे ऊंचे ते ऊंची हस्ती, और कहां हमने अज्ञानता के कारण कह दिया? आज कोई हमें कहे फलाना व्यक्ति जानवर जैसा है तो भी हमें इंसल्ट महसूस होता है, और ईश्वर को हम कहें जानवर में भी है तो कूड़े कचरे में भी है, क्या ये भगवान का अपमान नहीं है? तब मनुष्य क्या कहता है, नहीं, हर एक प्राणी में आत्मा भी है और परमात्मा भी बाजू में बैठा है। चलो ये बात भी अगर ले लिया जाए कि हर एक में आत्मा भी और परमात्मा भी बाजू में बैठा है, तो कोई व्यक्ति किसी का खून करता है या गलत कर्म करता है, ये कर्म किसका, आत्मा का या परमात्मा का? क्या कहेंगे, आत्मा का या परमात्मा का? आपका विवेक क्या कहता है? आत्मा का। अगर ये कर्म आत्मा का है तो उस वक्त परमात्मा अंदर बैठ के क्या कर रहे थे? क्या परमात्मा सर्वशक्तिमान के पास इतनी शक्ति नहीं जो एक आत्मा को गलत कर्म करने से रोक सके? इतनी ताकत नहीं है? तो फिर वो क्यों बैठा है? आज देखो घर में बच्चे होते हैं और खेल रहे होते हैं और किसी बात को लेकर झगड़ा करने लग जाए, मारपीट पर उतर आए, आप सामने बैठे हो, लड़ने देंगे या छुड़ाएंगे? क्या करेंगे, छुड़ाएंगे? ये तो नहीं कहेंगे उसका कर्म वो जाने, ये तो नहीं कहा, तुरंत छुड़ाएंगे। अरे गली में खेलने वाले बच्चे भी आपके बच्चे नहीं है लेकिन गली में खेलने वाले बच्चे हैं, और किसी बात को लेकर के अगर लड़ाई झगड़ा करने लग जाए, मारपीट पर उतर आए, आप देखते रहेंगे या छुड़ाएंगे? अरे बच्चे क्या चाहिए आप लोगों को, क्यों लड़ रहे हो? कहेंगे या नहीं कहेंगे? परमात्मा जो सर्वशक्तिमान हरेक के अंदर बैठा हो और वो एक आत्मा को गलत कर्म करने से रोक न सके, तो बैठने का कोई मतलब है? कोई मतलब है? क्यों बैठा है फिर? आज देखो कोई बात हमें बताता है या पूछता है और हमें मालूम नहीं होता है तो हम क्या कहते हैं, ऊपर वाला जाने, छोड़ो ना, तुम क्यों झंझट में पड़ते हो, कहते हैं ना। कभी गलती से भी कहा नीचे वाला जाने, अनजानेपन में भी हमारे मुख से यही निकलता ऊपर वाला जाने, तो हु इज दिस ऊपर वाला देन, और सर्वव्यापी कौन है। गीता में जब भगवान ने चौथे अध्याय में ये वायदा दिया, यदा यदा ही धर्मस्य भावा, जब जब धर्म की अति ग्लानी होती है तब तब मैं इस संसार में अवतरित होता हूँ, इसलिए अधर्म का नाश और सत धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए। ये भगवान का वायदा है गीता के अंदर। तो अगर भगवान सर्वव्यापी है तो फिर अधर्म क्यों, फिर कौन आएगा? अगर यही है तो आने के सवाल ही नहीं है। अच्छा, गीता में भी कहा संभवामि युगे युगे, तो कितनी बार आना चाहिए? अधर्म का समय पर आए, हर अधर्म के समय पर आए, मना एक बार आना चाहिए। संभवामि युगे युगे यानी चार युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, तो चार बार आना चाहिए, तो 10 अवतार दिखा दिए। अच्छा, उससे भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ तो 24 अवतार दिखा दिए, और उससे भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ तो कण कण में व्यापक है कह दिया। अब व्हाट इज द ट्रुथ? कितना कंफ्यूजन है। वो एक बार आएगा, चार बार आएगा, 10 बार आएगा, 24 बार आएगा, या आने की जरूरत ही नहीं है ही है। यही बताता है कि कितना मिस इंटरप्रिटेशन शास्त्रों में हुआ है। जिस तरह कम्युनिकेशन स्किल्स जब सिखाते हैं कॉर्पोरेट्स में, तभी भी एक बात एक व्यक्ति को कही जाए और जब वो 10वें व्यक्ति तक आती है परिवर्तन हो जाती है। ठीक इसी तरह शास्त्र लिखे कितने हजारों साल हुए, कितनी बार इंटरप्रिटेशन हुआ, हर एक का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अपना अपना है, उसने अपने लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग से अगर उसको इंटरप्रेट किया है तो चेंज होगा या नहीं होगा, इसलिए इतना कंफ्यूजन है कि आज कोई इंसान समझ ही नहीं पाता कब आना चाहिए। तो कहा सर्वव्यापी है ही है, आने की जरूरत ही क्या है। फिर क्या कहते हैं, अरे गीता में भगवान ने कहा मैं हरेक के हृदय में वास करता हूं। आज एक बच्चा अगर दूर कहीं पढ़ने गया हो और वो फोन करता है अपने मम्मी पापा को और मम्मी से पूछता है, मम्मी आप मुझे याद करती हो, तो आप क्या कहेंगे? अरे बेटा तू तो मेरे दिल में रहता है, कहेंगे या नहीं? फिजिकली दिल में रहने की बात थोड़ी है, भाव ये है कि तेरी याद हर वक्त मेरे दिल में समाई हुई है। ठीक इसी तरह हाँ ये कहे तो बराबर है कि ईश्वर की याद भी हर वक्त हमारे दिल में समाई हुई है। लेकिन वो भी नहीं है, हर वक्त कहाँ है? आज मान लो कि ईश्वर एक दिन प्रकट हो जाए आपके सामने और वो कहे कि तुम मुझे इतने समय से याद कर रहे हो, तेरा इतना प्यार है मुझसे, मैं अभी हर वक्त तेरे साथ ही रहूंगा, किसी को दिखाई नहीं दूंगा, तेरे को दिखाई दूंगा, हर वक्त तेरे साथ साथ रहूंगा। अब ईश्वर अगर आपके साथ साथ हो और कहीं आपको झूठ बोलना पड़े, बोल पाएंगे? वो देख रहा है, बाजू में खड़ा है, बोल पाएंगे? आप अगर कोई गलत काम करने जा रहे हैं, कर पाएंगे? ईश्वर आपके साथ है, कर पाएंगे? तो भाव ये था कि मिडिल एज में भी जब पाप कर्म आरंभ हुआ, उस समय ऋषि मुनियों ने सोचा ये मनुष्य को पाप कर्म से बचाएं कैसे। तब उन्होंने ये बात कही कि हे मानव, तुम जब पाप करता है तो ये मत समझना तुझे कोई नहीं देख रहा है, ईश्वर तेरे साथ है, तेरे हृदय में है, वो तुझे देख रहा है। ताकि मनुष्य पाप कर्म न करे, भाव ये था। जिस तरह एक छोटा बच्चा होता है, जब घुटना करना सीखता है तो घड़ी घड़ी घर से बाहर जाना चाहता है। मां को उस वक्त बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कहीं रास्ते पर ना निकल जाए। तो मां उस बच्चे को क्या करती है, दरवाजे तक ले जाती है, बाहर एक कुत्ता या गाय दिखाकर कहेंगी, देख बाहर गया ना, कुत्ता उठा के ले जाएगा। अंदर में वो समझती है कुत्ता कोई उठा के ले जाने वाला नहीं है, एक डर बिठाया ताकि बच्चा घर के अंदर खेलता रहे, सुरक्षित रहे। ये भावना थी सुरक्षा। और इसीलिए जब वो बच्चा घुटना करते हुए दरवाजे तक जाता भी है, बाहर एक कुत्ता या गाय को देखते ही क्या सोचेगा, क्या करेगा, मुड़ करके अंदर आ जाएगा और इतना खुश होता है, प्रकट करता है, आई एम सेफ, मैं बाहर नहीं गया, कुत्ता उठा के नहीं लेके गया, व्यक्त करता है अपने हाव भाव से। लेकिन वही बच्चा 8-10 साल का हो जाए, उसके बाद उसको कह के तो देखो, बाहर गया तो कुत्ता उठा के ले जाएगा, क्या कहेगा, हंसेगा अपनी माँ पर, मेरी माँ कितनी भोली है, इतना भी नहीं समझती है, कुत्ता कोई उठा के ले जाने वाला है क्या। और हंसते हुए निकल जाता है और बाहर जाकर कुत्ते के बच्चे को घर में ले आएगा, कहेंगे लो, वो क्या मुझे ले जाएंगे, मैं ही लेके आया। जिस बात को उसने सत्य मान लिया था, समझदार होने के बाद उस बात को स्वीकार नहीं करता है। ठीक इसी तरह आज से 500 साल पूर्व भी जब कोई किसी को प्रेरणा देता था पाप करने के लिए, तो मनुष्य क्या कहता था, बाल बच्चे वाला हूं, समाज में रहना, इज्जत से जीना है, मैं ये पाप नहीं करूंगा, ऊपर वाला भी देख रहा है, कह देता था ऐसा। लेकिन आज विज्ञान के युग में मनुष्य बड़ा समझदार हो गया है, और इसीलिए जब उसको कोई कहता है भगवान तुझे देख रहा है, तो क्या कहता है, अरे वो देखता क्यों है फिर, वो तो सर्वशक्तिमान है, वो तो मुझे पाप कर्म करने से छुड़ा सकता है। और वही डायलॉग बोलता है, कोई उसको अगर कहता भी है क्यों इतना पाप करता है, थोड़ा तो ऊपर वाले का डर रख, तो क्या कहेगा, अरे बाल बच्चे वाला हूं, समाज में रहना, इज्जत से जीना है, पाप नहीं करूंगा तो सबका पेट कैसे भरूंगा। वो डर भी नहीं रहा, वो डर भी नहीं रहा। अगर सचमुच ईश्वर सर्वव्यापी है तो मनुष्य को थोड़ा तो डर रहता था, कहां है डर। लेकिन वो बात याद आती है कि जब यही डायलॉग वाल्मीकि जी ने कहा, वाल्मीकि जी एक बहुत बड़ा लुटेरा था, और जब एक महात्मा जी को पकड़ा और कहा जो है वो दे दो, तो उसने पूछा तुम ये किसके लिए कर रहे हो? तो कहा मेरा परिवार है, मुझे भी पालना है, उसके लिए कर रहा हूं। तो कहा परिवार वालों से जरा पूछ के तो आ कि क्या वो तेरे पाप में भी भागीदार है, तुम्हारे हर कर्म में भागीदार है? जिस समय फल भोगने का समय आएगा तो क्या वो भी आपके साथ साथ भोगने के लिए तैयार होंगे? क्यों नहीं होंगे, जरूर होंगे, उनके लिए कर रहा हूं। क्या पूछ के तो आ पहले। गया माँ बाप से पूछा आप मेरे पाप में भागीदार बनेंगे जब भोगने का समय आएगा? तो माता पिता ने क्या कहा, अभी हमारी उम्र कितनी बची है, हम तो चले जाएंगे, कहां चले जाएंगे वो भी हमें पता नहीं, तुम कहां हम कहां, ये तो एक जन्म का साथ था, और इसीलिए हरेक का कर्म खुद भोगना पड़ता है, हम कैसे भोगेंगे, हम तेरे पाप कर्म में भागीदार कैसे बन सकते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं हम कहां जाने वाले हैं, और तुम्हें भी पता नहीं है हम कहां होंगे, कैसे भोगेंगे। उसने अपनी पत्नी से पूछा, उसने कहा भाई मैं भी क्यों भोगूं, जब आपके माता पिता भोगने के लिए तैयार नहीं है तो हम क्यों भोगे। बच्चों से पूछा भाई आपके लिए मैं कर रहा हूं, तो क्या कहा, पिताजी आप तो चले जाएंगे, फिर आप कहां हम कहां, हम कैसे भोगेंगे, वो तो जो कर्म आप कर रहे हैं आपको ही भोगना पड़ेगा। तब वाल्मीकि जी की आंखें खुली कि जब मेरे पाप कर्म में कोई भागीदार बनने वाले नहीं तो क्यों मैं करूं परिवर्तन। आज वही बात मैं आपसे पूछती हूं, आपके परिवार के सदस्य सिर्फ इस एक जन्म में आपके साथ हुए हैं, इस एक जन्म में, उसके बाद तो वो कहां से आए और कहां चले जाएंगे। लेकिन जो मनुष्य पाप कर रहा है कि मेरे बच्चे के बच्चे खाएंगे, लेकिन उसके भाग्य में ही नहीं है, तो क्या होगा? और जो पाप कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, अगर उनके नसीब में नहीं है तो भोगना तो आपको अकेले को पड़ेगा ना। इसीलिए कहा जाता कर्म सिद्धांत बहुत गहरा है, किसी को बख्शता नहीं है। तो किसके लिए कर रहे हैं, जिसको आप जानते नहीं कौन कहां से आया, इस एक जन्म में साथ हुए, और वो भी हर आत्मा अपना भाग्य खुद लेकर आता है पिछले कर्मों के हिसाब से, जितना लेना होगा उतना ही लेगा आपसे, बाकी तो कोई और ही लूट के ले जाएगा। तो किसके लिए कर रहे हैं, किसके लिए? भावार्थ ये कि सर्वव्यापी से आज कितनी बातों में अंधश्रद्धा उत्पन्न हुई है। मुझे याद आता है जब गुजरात का भुज का भूकंप हुआ था, उस वक्त हम गए थे, कई लोगों के घर ध्वस्त हो गए थे। जब सरकार हेलीकॉप्टर से फूड पैकेट्स डालते थे, जो गरीब होते थे वो तो दौड़ के जाते थे, लेकिन जो सभ्य लोग थे वो कहते हम दौड़ नहीं सकते, हमारा कॉन्शियस अलाउ नहीं करता था कि वो भिखारियों के साथ हम भी दौड़े वो फूड पैकेट्स के लिए। उनका अनुभव जब हम लोग ने सुना, वो दौड़ नहीं सकते, कहा हमारा सारा एक दिन में रोड़पति हो गए, बच्चों के साथ रोड पर बैठे थे, बड़े बड़े बैंक मैनेजर्स, डॉक्टर्स, क्या वकील, क्या कहा उन लोगों के साथ हम कैसे दौड़ सकते फूड पैकेट्स के लिए, कई दिनों से भूखे थे। तब हमारे आश्रम के भाई बहनों ने जब देखा, अरे ये तो डॉक्टर साहब है, अरे ये तो वकील साहब है, सबको पकड़ पकड़ करके ले आए आश्रम पर, क्योंकि आश्रम एक ही खड़ा था पूरे इलाके में, और वहां पर लंगर इस तरह से चलाया था ताकि इन लोगों को जो नहीं भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं उस फूड पैकेट्स के लिए, वहां यहां से सामान भेज भेज करके पूरा समय एक महीने तक तो लंगर चलाते ही रहे, कंटिन्यूअस तीनों टाइम। वो अश्रुधार में रोते थे कि सचमुच आज हमको लगता है भगवान साक्षात हमारे लिए आए हैं, नहीं तो हम ने ये अंदर तय कर लिया था भूखे मर जाएंगे, लेकिन इस तरह से ये भिखारियों के साथ तो हम भाग नहीं सकते हैं, ये हमारा कॉन्शियस हमें अलाउ नहीं करता है। तो किसके नसीब में क्या है क्या पता, इसीलिए कहा हर एक का नसीब अपने साथ है, तो क्यों पाप करें। तो सर्वव्यापकता की बात भावनात्मक सत्य है, सिद्धांतिक नहीं कि ये माइक में परमात्मा इसलिए बैठ के मैं इसकी पूजा करूं, ये टेबल में परमात्मा इसलिए मैं बैठ के इसकी पूजा करूं, ये कुर्सी में परमात्मा इसलिए मैं बैठ के इसकी पूजा करूं, ये अंधश्रद्धा है। भाव को जरूर अंदर ले आओ। आज हम भी अगर बाहर जाते हैं, कोई कहते हैं बहन जी आप अकेले जा रहे हैं, हम कहेंगे नहीं ईश्वर हमारे साथ है, फीलिंग, उस फीलिंग में रहो और हर वक्त उसकी याद अंदर में बनी रहे, ये भावनात्मक सत्य जो ऋषि मुनियों ने समझाना चाहा, क्योंकि जब इस भाव को लेकर चलेंगे तो कई प्रकार के गलत कर्म से बच जाएंगे, पाप कर्म से बच जाएंगे। क्लियर, आगे बढ़े। पांचवी बात, जब हम कहते निराकार है, न नाम है न रूप है नाकार है, नाम रूप आकार बिना इस संसार में कोई चीज है, हवा जो दिखाई नहीं देती है। लेकिन अगर एक चित्रकार को चित्र निकालना हो और उसको तेज हवा दिखानी हो, चक्रवात दिखाना हो, तो चित्र में दिखा सकता है, नहीं दिखा सकता है। जो हवा का आकार नहीं है उसको भी वो एक आकार दे देता है कि चित्र को देखकर कहेंगे बड़ी तेज हवा चल रही है। और एकदम शांत प्रकृति दिखाना है तो हवा चल ही नहीं रही है, तो पूरा प्रतिबिंब तालाब के अंदर दिखा देगा, बादल भी है तो पहाड़ भी है, सब पेड़ भी ऐसे एकदम स्टिल, तो कहते जैसे हवा चल ही नहीं रही है, एकदम शांत। जो हवा का आकार नहीं उसको भी एक चित्रकार चित्र में ढाल देता है, तो क्या स्वयं परमात्मा का कोई आकार ही नहीं होगा, है उसका आकार भी, वो कौन सा है। तो जिस तरह पशुओं का पिता पशु है, पक्षियों का पिता पक्षी है, मनुष्य का पिता मनुष्य है, तो आत्मा का पिता परमात्मा। आत्मा का स्वरूप क्या है, ज्योति पुंज। इसीलिए व्यक्ति जब शरीर छोड़ते हैं तो ज्योत जलाई जाती है, यादगार के जो चैतन्य ज्योत थी वो चली गई, उसके यादगार में ज्योत जलाई। तो आत्मा का स्वरूप अगर ज्योति स्वरूप है तो उसके पिता का स्वरूप कैसा होना चाहिए, वो भी ज्योति पुंज है, अनंत प्रकाशमान दिव्य तेजोमय स्वरूप है। अब उसके साथ वो पांचों बातें लगती है। तो हिंदू धर्म में जिसको ज्योतिर्लिंगम के रूप में हमने पूजा, ज्योतिर्लिंगम भावार्थ के ज्योति की पूजा कैसे करें, इसलिए एक आकृति दे दी जिस पर भारतवासी अपनी भावनाओं को अर्पित कर सके। लेकिन उसको कहा ज्योतिर्लिंगम कि ये पत्थर की पूजा नहीं कर रहे, उस ज्योति स्वरूप परमात्मा की प्रति आप अपने भाव को प्रकट कर रहे हो। और नाम दिया सदा शिव, जो सदा कल्याण करने वाले हैं। सदा शिव परमात्मा का नाम भी गुणवाचक है। शिव माना परम पवित्र, शिव माना शांति, शिव माना कल्याण। तो नाम भी गुणवाचक कर्तव्यवाचक है। भारत में जितने भी शिव के मंदिर है, विशेषकर द्वादश ज्योतिर्लिंगम जो आज भी महान तीर्थ है, उसके अलावा भी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चारों दिशा में उसकी पूजा होती है। नॉर्थ में चले जाओ अमरनाथ के रूप में उसकी पूजा होती है, जो अमर आत्माओं का नाथ है। साउथ में चले जाओ रामेश्वर के रूप में उसकी पूजा होती है, जिसकी पूजा श्री राम ने भी की लंका जाने से पूर्व। तो जो श्री राम के भी आराध्य रहे। तो ईस्ट में चले जाओ काशी विश्वनाथ मिलेगा, सारे विश्व का नाथ है। और वेस्ट में चले जाओ सोमनाथ मिलेगा, जो सोम अमृत देने वाला नाथ है। भारत से बाहर जाओ नेपाल, पशुपति नाथ मिलेगा। भावार्थ ये कि भारत का कोई गांव भी ऐसा नहीं होगा जहां महादेव का मंदिर न हो। देवताओं की पूजा स्टेट वाइज हो गई। नॉर्थ में जाएंगे श्री राम से कृष्ण की पूजा अधिक मिलेगी, तो साउथ में चले जाओ श्री वेंकटेश बालाजी की पूजा मिलेगी, तो कलकत्ता चले जाओ काली पूजा दुर्गा पूजा मिलेगी, गुजरात महाराष्ट्र में जाओ गणेश पूजा ज्यादा मिलेगी, भले आजकल तो सब जगह है। लेकिन तमिलनाडु में जाओ तो मुर्गन की पूजा मिलेगी कार्तिकेय की, राजस्थान में जाओ रामदेवरा जी की पूजा मिलेगी। तो देवताओं की पूजा स्टेट वाइज हो गई, लेकिन परमात्मा की पूजा सारे भारत भर में है। हर मंदिर के नाम भी गुणवाचक कर्तव्यवाचक, हर मंदिर के नाम के पीछे भी नाथ या ईश्वर लगता है। अमरनाथ, बबुलनाथ, भोलेनाथ, सोमनाथ, विश्वनाथ, पशुपतिनाथ या ईश्वर, रामेश्वर, गोपेश्वर, विश्वेश्वर, पापकटेश्वर, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, ये सारे शिव के मंदिर, जो सर्व का नाथ और ईश्वर है। इसीलिए उसको कहा देवों का भी देव महादेव, जिसकी पूजा देवी देवताओं ने भी की, यानी जो देवताओं के भी आराध्य रहे। रामेश्वरम में श्री राम ने उसकी पूजा की, तो गोपेश्वरम में श्री कृष्ण ने वृंदावन में उसकी पूजा की। महाभारत के युद्ध के पहले स्थानेश्वर की पूजा की कुरुक्षेत्र में। और जिन देवियों को हम देखते हैं, ये देवियां कौन है, तो कहते शिव शक्ति की आरती जे कोई गाए, शिव की उत्पन्न की हुई शक्ति है। लेकिन यहां भारतवासी एक गलती जरूर करते हैं, जो शिव और शंकर दोनों को मिला देते हैं, एक समझ लेते हैं। अरे जहां नाम अलग है शिव और शंकर, जहां आकृति ही अलग है, स्वरूप अलग है, आइडेंटिफिकेशन अलग है, एक है निराकार ज्योतिर्लिंगम, एक है आकारी देव पुरुष, जहां ऑक्यूपेशन ही अलग है। शिव को कहा भोलेनाथ, सदा कल्याण करने वाले, और शंकर के लिए कहा तीसरा नेत्र खुलता है तो महाविनाश प्रलय हो जाता है। नाम अलग, स्वरूप अलग, कार्य अलग, फिर एक कैसे हो सकता है? कभी भी कोई अगर मंत्र देता है तो ओम नमः शिवाय का मंत्र देता है, हम ओम नमः शंकराय तो नहीं जपते हैं। एक है तो जपना चाहिए। भारत में महाशिवरात्रि मनाई जाती है, उसको शंकर रात्रि तो नहीं कहा? शंकर को भी ध्यान मुद्रा में दिखाया है। किसका ध्यान कर रहे हैं? उनसे श्रेष्ठ कौन था जिसका वो भी ध्यान कर रहे हैं? पूरा परिवार दिखाते हैं, माँ पार्वती है, दो बच्चे हैं, गृहस्थी बनाया उसको, और सारा परिवार मिल करके शिव की पूजा कर रहा है। ऐसे भी चित्र देखा होगा आपने कि सारा परिवार शंकर पार्वती गणेश और कार्तिक मिल करके शिव की पूजा कर रहे हैं। कैलाश पर्वत पर बैठकर ध्यान किया, किसका ध्यान किया? कैलाश का। कैलाश माना जो सबसे बड़े से बड़ा शिवलिंग, पूरा पर्वत ही शिवलिंग आकृति का है। अब शंकर को ध्यान करने की क्या जरूरत थी? तो उसको एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा था, आंख खोलते महाविनाश होना चाहिए, तो कितनी प्रचंड शक्ति होनी चाहिए तब ये कार्य कर सके। तो इसीलिए इतने सालों ध्यान किया, और जब उनको उस त्रिदेव से ऑर्डर मिला, इसीलिए शिव को कहते त्रिदेव, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी क्रिएटर है। इसलिए ये तीनों देवताओं के भी जन्म नहीं दिखाते, उत्पत्ति दिखाते हैं। और उत्पत्ति कहां से हुई? कहा प्रकाश से हुई, लाइट से हुई, ओम की ध्वनि से हुई। यही बताते हैं त्रिदेव का रचयिता कौन? वो परम प्रकाश, प्रकाशमान जो है। तो इसीलिए कहा कि देवों का भी देव, और ये तीनों देवताओं के भी क्रिएटर है, क्योंकि परमात्मा करण करावनहार खुद नहीं करते हैं, कराते हैं। ब्रह्मा द्वारा सृजन का कार्य, विष्णु द्वारा पालना का कार्य, और शंकर द्वारा महाविनाश का कार्य। कराने वाला कौन? वो परमेश्वर। इसलिए उसको कहा करण करावनहार है। तो मनुष्य ने क्या समझ लिया? अरे जो कुछ भी इंसान भी करता है वो भी वही कराता है। ये हाथ उठा तो भगवान की मर्जी से, पत्ता हिला तो भगवान की मर्जी से, अरे ये हाथ उठा और जाकर किसी को थप्पड़ मारा तो क्या भगवान की मर्जी हुई क्या? कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग, मिस इंटरप्रिटेशन हो गई है ईश्वर के विषय में। तो वो क्या करता है, क्या नहीं करता है, और क्या कराता है, और किसके द्वारा कराता है, इंसान की बात नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा कार्य कराता है। बाकी इंसान को तो फ्रीडम दी हुई है, और इसीलिए कर्म सिद्धांत यही कहता है जो करोगे सो पाओगे, जैसा करोगे वैसा पाओगे, जितना करोगे उतना पाओगे। ये कर्म सिद्धांत है, और इसीलिए फ्रीडम दे दिया, नाउ यू आर फ्री टू मेक योर चॉइस कि तुम्हें क्या करना है, क्योंकि ये कर्म सिद्धांत भगवान ने बता दिया। तो हमारे कर्म के लिए वो उत्तरदायी नहीं है, हमारे कर्म के लिए हम खुद उत्तरदायी हैं। इसलिए इस भ्रम में न जिए कि हम कुछ भी करेंगे तो हमें थोड़ी भोगना है, वो तो भगवान कराता है। नहीं, आप करते हैं। भगवान ने विवेक दिया है सही गलत को समझने का, और फ्रीडम दी है कि अब तुम्हारे पास विवेक है, सही क्या है गलत क्या है इसको पहचानने के लिए, एंड नाउ यू आर फ्री, यू हैव दैट फ्री विल टू मेक योर ओन चॉइस एंड देन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर कर्म। इसीलिए तो आज समाज के अंदर कोई बहुत दुखी है, ये बताता है उसके कर्म। और मनुष्य कभी अपने कर्म से छूट नहीं सकता, भाग नहीं सकता है ना। तब कहा करण करावनहार उस लेवल पर काम करते, सृष्टि की सर्जना, सृष्टि की पालना और सृष्टि का महाविनाश। बाकी जो कुछ हम कर रहे हैं वो तो हम ही कर रहे हैं, वी आर रिस्पॉन्सिबल, नोबडी एल्स इज रिस्पॉन्सिबल। तो ये तो हुआ भेद शिव और शंकर के बीच में, ये हुई भारत वालों की बात। इसीलिए शिव का मंदिर जब भारत में बनता है और शिव लिंग की जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो शिव लिंग को कभी द्वार से नहीं लाया जाता है, पता है कहां से लाते हैं, ऊपर से लाया जाता है, ऊपर का गुंबज नहीं लगाते हैं। और जैसे ही शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करनी होती है तो ऊपर से लिंग को उतारा जाता है, बाकी सभी देवी देवताओं की मूर्ति द्वार से लाएंगे लेकिन शिवलिंग को कभी द्वार से नहीं, ऊपर से उतारा जाता है। भक्ति में भी इतना सुंदर यादगार है, एक परमात्मा ये जो अवतरित होते हैं, किसी मां के गर्भ से इस संसार में द्वार से नहीं आते हैं, ऊपर से यानी पर काया प्रवेश करते हैं अपना कार्य करने के लिए। ये हुई भारत वालों की बात। और इसीलिए भारत वालों ने कितने नाम दे दिए, किसी ने उसको ईश्वर कहा, किसी ने उसको प्रभु कहा, किसी ने उसको हरि कहा, किसी ने उसको मालिक कहा। साईं बाबा ने क्या कहा, सबका मालिक एक। साईं बाबा ने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा, सबका मालिक एक। उसने उस मालिक की ओर ही इशारा किया। हम क्यों भूल गए रास्ता, कहां से भूल गए। ये हुई भारत वालों की बात। भारत से बाहर इस्लाम धर्म में जाओ, मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, परंतु बताते हैं कि इस्लाम धर्म में मक्का में पहले 360 देवी देवताओं की मूर्तियां होती थी, परंतु मोहम्मद पैगंबर साहब जब आए तब उन्होंने कहा अल्लाह एक है, ये सारे अल्लाह नहीं है। काफी मतभेद होने लगा, लड़ाई झगड़ा होने लगा, तब कहा जाते एक आकाशवाणी हुई, अब लड़ाई झगड़ा मत करो, मुझे इस स्वरूप में याद करो। और वो काबा का पवित्र ऊपर से आया था, जिसकी स्थापना स्वयं मोहम्मद पैगंबर साहब ने मक्का में की। और तब से लेकर के ये मान्यता हुई कि जीवन में एक बार ये पवित्र पत्थर का दर्शन अवश्य करना चाहिए, इसलिए हर साल उनकी हज यात्राएं निकलती है। हज में भी हर कोई नहीं जा सकता है, हज में जाने के नियम बड़े कड़े हैं, लेकिन जो हज में जाता है क्या करता है, अपने पापों का प्रायश्चित करता है। फिर एक पिल्लर है जिसको शैतान मानते हैं और शैतान को पत्थर मारते हैं, ये पवित्र पत्थर को चूमते हैं, सात बार परिक्रमा करते हैं। सात बार परिक्रमा सिर्फ हिंदू धर्म में होती है और सिर्फ मक्का में होती है और किसी मस्जिद में नहीं होती है। और अंत में अपनी बंदगी में एक लाइन जरूर कहते हैं, जिस लाइन के बिना उनका हज पूरा नहीं होता। और वो लाइन है, हे परवरदिगार, ईश्वर को एड्रेस किया है, नूरे इलाही, मेरा हज कबूल हो, कबूल हो, कबूल हो, तब उनका हज कबूल होता है। नूरे इलाही का मतलब है अल्लाह नूर है, नूर माना, तेज लाइट, ज्योति माना तेज लाइट। जिसको हिंदुओं ने ज्योति कहा, मुसलमानों ने नूर कहा, बात एक ही है या अलग है? एक ही तो है। और आगे जाए, क्रिश्चियन धर्म में जीसस ने कभी अपने आप को गॉड नहीं कहा, उसने यही कहा गॉड इज लाइट एंड द सन ऑफ गॉड। और इसलिए आज भी अगर वेटिकन चले जाओ तो वेटिकन के अंदर जीसस की प्रतिमा नहीं मिलेगी, अखंड ज्योति स्वरूप लाइट का सिंबल मिलेगा, जिसको उन्होंने कहा गॉड इज लाइट। क्रिश्चियनों ने कहा लाइट, मुसलमानों ने कहा नूर, हिंदुओं ने कहा ज्योति, बात एक ही है या अलग है? और आगे जाए, गुरु नानक देव ने यही कहा एक नूर, एक ओमकार निराकार निर्वैर सतनाम अकाल मूरत अजोनी, जो किसी योनियों में नहीं आता, जिसको काल कभी नहीं खा सकता, वो निराकार वही सच्चा पातशाह है, सत्य नाम है। कितनी सुंदर तरीके से सारी महिमा गाई है। और इसीलिए दिखाते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी ने भी शिव की महिमा की। और आगे जाए, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर दिखाते हैं, और ये 24 के 24 तीर्थंकर ध्यान मुद्रा में है। किसका ध्यान कर रहे हैं? तो कहा सिद्ध शिला का, सिद्ध शिलापति, अर्थात जो सर्वश्रेष्ठ है। और वो कौन है? तो कहा निराकार है, उसी का ध्यान कर रहे हैं। महावीर स्वामी ने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा, क्योंकि वो खुद भी ध्यान मुद्रा में है, वो खुद भी ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? और इसीलिए तीन बातें बताते जैन धर्म में, ज्ञान दर्शन चरित्र, यही सच्ची तपस्या है। ज्ञान के दिव्य चक्षु खोलने हैं तपस्या के माध्यम से, दर्शन शास्त्र में जो बातें उसको आचरण में लाना है, और चरित्र श्रेष्ठ होना चाहिए। और आगे जाए, महात्मा बुद्ध ने कभी मूर्ति पूजा की और किसी को प्रेरित नहीं किया, लेकिन आज भी अगर जापान चले जाओ तो 3 फुट की ऊंचाई पर 3 फुट दूर बैठ के एक थाली के अंदर लाल पत्थर रखा जाता है, बिल्कुल शिवलिंग आकार का होता है, जिसका नाम है चिंकोन शेकी। चिंकोन शेकी का मतलब है जो शांति का दाता है, जिसका ध्यान करने से हमारा मन शांत हो जाता है, रिलैक्स्ड होता है। इसीलिए उनका ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते। और आगे जाओ, पारसी धर्म में कहा जाता है पारसी लोग जब ईरान से भारत आए तो जलती हुई ज्योत को लेकर आए थे, और आज भी उनके मंदिर को कहा ही जाता है फायर टेंपल, जहां अखंड ज्योत निरंतर जलती है। तो सर्व धर्म मान्य पहली बात कौन है? एक ही तो है, जिसको हमने ज्योति कहा, किसी ने लाइट कहा, किसी ने नूर कहा, किसी ने निराकार कहा, किसी ने सिद्ध शिला कहा, चिंकोन शेकी कहा, अखंड ज्योति कहा, मालिक कहा, है तो वो एक ही। गॉड कहो, अल्लाह कहो, ईश्वर कहो, प्रभु कहो, मालिक कहो, है तो वो एक ही। आज आपको कोई चाचा कहे, मामा कहे, भाई कहे, पिताजी कहे, आपका स्वरूप वही रहेगा या हर बार बदली हो जाएगा? वही रहेगा ना। ठीक इसी तरह कोई गॉड कहे, अल्लाह कहे, ईश्वर कहे, प्रभु कहे, स्वरूप तो एक ही है हर धर्म में। तो पहली बात सर्व धर्म मान्य। शिव के साथ एक शब्द जुड़ता है, शिव शंभु। शंभु का मतलब है जो स्वयं प्रकट हुए, स्वयं भू, उसको क्रिएट करने वाले कोई माता पिता नहीं है, जो सुप्रीम अथॉरिटी है, त्रिदेव है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी रचने वाला है, उत्पन्न करने वाला है अपने दिव्य कार्य अर्थ, तो सर्वोच्च शक्ति जो सर्व से परे है, न जन्म है न मृत्यु है, अमरनाथ कहा, अकाल मूरत कहा, महाकालेश्वर इसलिए कहते हैं जिसको काल कभी खा नहीं सकता है। तो गीता में कहा मैं अजन्मा अकाल मूरत हूं, फिर कहा अव्यक्त स्वरूप हूं, मुझे कोई व्यक्त स्वरूप नहीं है, लाइट को कोई व्यक्त स्वरूप नहीं होता है, अव्यक्त हूं। फिर कहा अकर्ता भोगता है, न मैं कर्म करता न मैं फल भोगता हूं, आई एम बियॉन्ड एक्शन एंड रिएक्शन, और पर होते हुए भी सर्वज्ञ है, इसलिए शिवलिंग के ऊपर तीन लकीर लगाते जो आदि मध्य अंत का ज्ञाता है। वो तीन लकीर के बीच में एक आंख होती है, अर्थात जो मनुष्य आत्मा को ज्ञान के दिव्य चक्षु प्रदान करने वाले, और उसकी पूजा में तीन पत्र का बेल पत्र चढ़ता है जो एक डंडी से जुड़ा होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए, अर्थात जो ब्रह्मा विष्णु महेश के रचयिता है, ये तीनों देव के जो रचयिता है, और इसीलिए ये तीनों देव का गायन हर धर्म में, हिंदू धर्म में जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश का, इस्लाम धर्म में उसको जिब्राइल मिकाइल इसराफिल कहते हैं, क्रिश्चियन धर्म में उसको थ्री होली स्पिरिट्स कहते हैं। तो गुरु नानक देव ने कहा एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान, हर धर्म में ये तीनों का भी गायन है। और इन्फिनिट लाइट का मेजरमेंट कर सकते हैं क्या? इन्फिनिट, इन्फिनिट इन इट्स क्वालिटीज, इन्फिनिट इन पावर्स। तो ये था परमात्मा का संपूर्ण परिचय। जैसे किसी व्यक्ति का परिचय लेते ना, पांच बातें पूछते हैं, आपका नाम क्या है, फिर दूसरा आइडेंटिटी चाहिए, फोटो चाहिए, तीसरा क्वालिफिकेशन चाहिए, चौथा एड्रेस चाहिए, और पांचवा प्रेजेंट ऑक्यूपेशन चाहिए। तो आज परमात्मा के परिचय में भी हमने ये पांचों बातों को देखा, जिसका नाम है सदाशिव, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, मालिक, जो भी को, उसका स्वरूप ज्योति स्वरूप, प्रकाश, नूर, अखंड ज्योति, निराकार रूप है, और उसके क्वालिफिकेशन वो पांच बातें, सर्वधर्म मान्य, सर्वोच्च, सर्वोपरि, सर्वज्ञ और सर्व गुणों में अनंत, एड्रेस पार ब्रह्म में रहने वाला ईश्वर, ब्रह्म महातत्व में रहने वाला ईश्वर, और प्रेजेंट ऑक्यूपेशन यदा यदा ही धर्मस्य, धर्म ग्लानी जब होती है तब तब उसको आना पड़ता है, आकर वो खुद अपना परिचय देता है, नहीं तो हमको कहां से पता चलेगा। जिस तरह आप कोई गांव में चले जाओ, लोग आपका ड्रेस देख करके, आपकी बातचीत करने का ढंग देख करके, आपके फीचर्स को देख करके अनुमान लगाएंगे, ये फलानी जगह से आया होगा, ये ऐसे एक्सेंट है इसलिए वहां का होगा, वहां का होगा, अनुमान लगाएंगे। लेकिन जब आप खुद अपना परिचय देते हो तब उनको सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाता है। ठीक इसी तरह हमने भी आज तक ईश्वर के बारे में अनेक अनुमान लगाए, अजम्पशंस, लेकिन जब अधर्म के समय पर वो खुद आता है तब अपना परिचय रिवील करता है। तो इसीलिए ये था परमात्मा का संपूर्ण परिचय। अब तो अगर आपका बच्चा पूछे ये सारे देवताओं का हेड कौन है, तो बता सकेंगे या नहीं बता सकेंगे? अच्छा, आज तक ये शिकायत थी, हमारा मन लगता नहीं है ईश्वर में, हमारा मन लगता नहीं, कहां लगा ये पता नहीं था तो कैसे लगेगा। इसलिए फोकस नहीं हो पाता था, अब तो होगा या नहीं होगा, अब तो होगा, अब तो पता चला, तो अब तो हो जाना चाहिए। तो इसीलिए थोड़ी देर के लिए चलो बैठते हैं ईश्वर के ध्यान में, और अब क्लियर हो गया तो उसको विजुअलाइज करना भी आसान है। गीत बजेगा, उसके भाव में अपने मन को ले चले।